आज का प्रातः क्लास है 11 अप्रैल 1968। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठते हैं। क्यों? बच्चे तो याद की यात्रा में बैठते हैं, बेहद का बाप क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वो तो सदैव याद स्वरूप है ही है, स्वस्मृति में रहने वाला ही है और उसके कोई पापों का बोझ भी नहीं है। वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात शरीर को भुलाए रहे हैं। बाप की यह मदद मिलती है कि शरीर भूल जावे, तो अपनी सकाश देते हैं आत्माओं को कि हे आत्माएं, तुम भी हमारी तरह मेरी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। क्योंकि बाप देखते ही हैं आत्माओं की तरफ, देह की तरफ तो देखते ही नहीं है। तुम हरेक की बुद्धि भी बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। अच्छा, अभी डेड साइलेंस का अभ्यास करो। यह अभ्यास करते करते डेड साइलेंस का शरीर को छोड़कर के अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना ही शरीर के भान से निकलते जावेंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, मिसाल तो जो भी देते हैं उसमें जरूर कुछ रहस्य होते हैं। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर के वापस चले जावेंगे और फिर आवेंगे। ये बातें और कोई क्यों जान, कोई की बुद्धि में है नहीं। कोई ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बातें कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अभी वापस जाने की जर्नी है। आत्मा का बुद्धियोग उस तरफ लग गया है, इस दुनिया से बुद्धियोग टूट गया है। अभी हमारा नाटक पूरा हुआ, अभी घर जाना है और घर में बाप को ही याद करना है। वो ही पतित पावन है। गंगा को व पानी को लिबरेटर या गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर है और गाइड हो सकता है। और ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं कि एक बाप ही लिबरेटर गाइड कैसे हो सकता है। वहां भक्ति मार्ग में तो है ही भक्ति, उस भक्ति से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो नाम के लिए है। पानी कभी पावन नहीं बना सकता आत्मा को, शरीर को पावन बनावेगा। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल जाता है। भक्ति मार्ग में भावना के भाड़े का महत्व रख दिया है। इन सभी बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी अंधश्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, अंधे की औलाद अंधे। પ્રભુ ભગવાન વા છે ને, અંધે ઓર સોજરે કોણ હોતે હૈ યે ભી તુમ જાનતે હો, સારી સૃષ્ટિ કે આદિ મધ્ય અંત કો બાપ હી જાનતે હૈ, તુમ તો બાપ કો ભી જાન ગયે હો ઓર સૃષ્ટિ કે આદિ મધ્ય અંત કો ભી જાન ગયે હો, સારી સૃષ્ટિ કે ડ્યુરેશન કો ભી જાન ગયે હો, એક એક બાત પર વિચાર સાગર મંથન કરના હૈ ઓર અપના ફૈસલા આપ હી કરના હોતા હૈ, ભક્તિ ઓર જ્ઞાન કા કન્ટ્રાસ્ટ હૈ, જ્ઞાન બિલકુલ હી ન્યારી ચીજ હૈ ઓર યે નોલેજ નામી ગ્રામી હૈ, જો ભગવાન બાપ અહી આકર કે દેતે હૈ, પઢાઈ ભી રાજયોગ કી હૈ, બચ્ચો કી યે ભી માલૂમ પડા હૈ, યે દેવતાએ હી સંપૂર્ણ અધિકારી થે, ઇનકો નિર્વિકારી કિસને બનાયા, રચેતા બાપ ને હી બનાયા, હો ચેતા બાપ બેઠ અપના પરિચય દેતે હૈ, વો બાપ પરમાત્મા હૈ, પરમ પાર્ટધારી આત્મા કો હી પરમાત્મા કહેતે હૈ, અંગ્રેજી મેં સુપ્રીમ સોલ કહા જાતા હૈ, સોલ અર્થાત આત્મા, ઓર બાપ કી આત્મા કોઈ બડી નહીં હોતી હૈ, બાપ કી આત્મા ભી એસી હી હોતી હૈ જૈસે તુમ બચ્ચો કી હૈ, એસે નહીં બચ્ચે છોટે ઓર બાપ બડા હૈ, નહીં વો સુપ્રીમ નોલેજફુલ બાપ બહોત હી પ્યાર સે બચ્ચો કો સમજાતે હૈ, પાર્ટ બજાને વાલી આત્મા હૈ, જરૂર શરીર ધારણ કરકે પાર્ટ બજાવેગી, ઓર આત્મા કા રહેને કા સ્થાન શાંતિધામ હૈ, બચ્ચે જાનતે હૈ હમ આત્મા હૈ, અંધે હૈ, બ્રહ્મ મહત્તત્વ મેં રહેતે હૈ, જૈસે હિન્દુસ્તાન કે રહેને વાલે અપન કો હિન્દુ કહ દેતે હૈ, વૈસે બ્રહ્માંડ મેં રહેને વાલે ભી ફિર બ્રહ્મ કો ઈશ્વર સમજ લેતે હૈ, ડ્રામા મેં ગિરને કા ઉપાય ભી નુદા હુઆ હૈ, જાનતે તો હૈ નહીં, તો વાપસ કોઈ જા ભી નહીં સકતે હૈ, બલ કિતની ભી કોઈ મહેનત કરે, નાટક જબ પૂરા હોતા હૈ તબ હી સભી એક્ટર્સ આકર કે ઇકઠ્ઠે હોતે હૈ, ક્રિએટર ડાયરેક્ટર મુખ્ય એક્ટર્સ સભી ખડે હો જાતે હૈ, બચ્ચે જાનતે હૈ અબ યે નાટક પૂરા હોતા હૈ, યે બાતે કોઈ ભી સાધુ સંત આદિ નહીં જાન સકતે, આત્મા કી નોલેજ કોઈ કો હૈ નહીં, પરમાત્મા બાપ યહાં એક હી બાર આતે હૈ, ઓર સભી કો તો યહાં પાઠ બજાના હૈ, શંકરાચાર્ય કો દેખો ઉનકી વૃદ્ધિ હોતી રહેતી હૈ, યે ઇતની સભી આત્માએ ફિર કહાં સે આઈ, અગર કોઈ વાપસ જાતા હૈ ફિર તો વહ રસમ પડ જાવે વાપસ જાને કી, એક આવે ઓર દૂસરા જાવે ફિર ઉસમે પુનર્જન્મ કહી કહા હી નહીં જા સકતા, પુનર્જન્મ તો શરૂ સે હી ચલતા આયા હૈ, કોઈ વાપસ નહીં જા સકતા, પહેલે નંબર મેં હૈ યે લક્ષ્મી નારાયણ બાપ ને સમજાયા પુનર્જન્મ લેતે લેતે પિછાડી મેં જબ આતે હૈ तो फिर पहले नंबर में इनको जाना पड़ता है। इसमें संशय की कोई बात नहीं हो सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे तुमको पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज होती है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, वहां तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि कुछ भी नहीं होती है, वहां तुम पूज्य देवी देवता बन जाते हो, फिर आधा कल्प बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कह सकते, क्योंकि खुद ही पुजारी पूजा पुजारी बनकर पूजा करने लग पड़ते। 11468 की वाणी का दूसरा पेज। फिर बाप आकर के पूज्य बनाते हैं, और तो कोई देश में ये ज्ञान होता ही नहीं है। राम राज्य और रावण राज्य, अभी तुम तो समझ गए हो राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, और रावण राज्य का ड्यूरेशन कितना है? 2500 साल राम राज्य, 2500 साल रावण राज्य। ये सिद्ध करना चाहिए कि ये नाटक है, उनको समझना है। ऊंच के ऊंच बाप है और वो भी नॉलेजफुल है। हम उन ऊंचते ऊंच बाप के द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, और हमको ऊंचते ऊंच पद मिलता है। हमको बाप पढ़ाते हैं, देवी को भी दान करना है। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हो ऐसे हो। इस समय तुम जानते हो कि हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई तो उपाय ही नहीं होता है। अगर और कोई उपाय जानता हो तो बतावे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे ब्रह्म वा तत्व कोई निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है, आत्मा ही विकारी बनती है। तत्व तो जड़ है, विकारी निर्विकारी बनने की बात ही नहीं। ब्रह्म को व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है, वो जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, और फिर मिलेच्छ भी बनती है। अभी तुम बच्चों को पवित्रता पवित्रता का कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। कोई भी अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती है। अभी पवित्र कैसे बने, इसके लिए ही रड़ी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम जानते हो ये है संगम युग, और इस संगम युग में बाप एक ही बार आते हैं ले जाने के लिए, परंतु नई दुनिया में तो सभी नहीं जावेंगे। जिनका पार्टी नहीं है वो नई दुनिया में कैसे जावेंगे? वो शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्र भी ये दिखाया है। बाकी और जो चित्र आदि है वो सभी भक्ति मार्ग के हैं, और ये है ज्ञान मार्ग का चित्र, जिसे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। 84 की सीढ़ी तो बुद्धि में बैठ गई, कैसे कैसे नीचे उतरते रहते हैं। नीचे उतरते उतरते 14 कला 12 कला बने, अभी तो फिर कोई कला नहीं रही। नंबर बार तो होते ही है, एक्टर्स भी नंबर बार आते हैं। कोई का कम वेतन होता है, कोई का ज्यादा वेतन होता है, कोई का 150 भी, तो देखो कितना फर्क हो जाता है। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में अगर कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहां तो फिर पढ़ने की बात नहीं है, हाँ उनका पद कम हो जाता है, फिर ऐसी पढ़ाई कब होगी ही नहीं। एक बार ये पढ़ाई होती है और बाप भी एक बार ही आते हैं। बच्चे जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये बात तुम किसी को समझावेंगे तो वो मानेंगे। क्रिश्चियंस की बुद्धि पत्थर बुद्धि नहीं है जितनी यहां वालों की है। क्यों है? क्योंकि यहां वाले भारतवासी पुराने हैं और क्रिश्चियन धर्म तो अभी 2000 साल पहले आया है, तो ज्यादा तमो प्रधान कौन बनते हैं? भारतवासी। वो सुख भी कम भोगते हैं तो दुख भी कम भोगते हैं। भारतवासी दुखी भी बहुत होते हैं तो सुखी भी बहुत होते हैं। तो क्रिश्चियंस की बुद्धि इतनी पतित नहीं बनी है तो वो इन बातों को झट समझ सकेंगे। वो लोग साइंस में भी बड़े तीखे होते हैं और सभी इनों से ही सीखते हैं। उनों की न पार्श्व बुद्धि बनती है न पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन क्रिश्चियंस की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियंस से ही निकला है और ये सारा प्रचार सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर तुम सुखधाम शांति धाम में चले जाएंगे, नहीं तो इतने सभी मनुष्य आत्माएं वापस कैसे जावे? साइंस से विनाश हो जाएगा, सभी आत्माएं शरीर छोड़ करके घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति हो जाएगी। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए तो साइंस और कैलमिटीज जिसको खुदाई आपदाएं कहते हैं ये भी होनी चाहिए। समझाना चाहिए यहां लड़ाई के निमित्त बनते हैं, ये सब मुक्ति धाम ले जाने के लिए है। भक्ति मार्ग में भी यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, भगवान के पास अर्थात मुक्ति धाम जाने के लिए कितना तपस्या करते हैं। इस समय ये देखो लड़ाई निमित्त बनी हुई है, इतने सभी को मुक्ति धाम जाना है। तुमने कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे, परंतु कोई भी मुक्ति धाम नहीं जा सका। इतने साइंस के गोले आदि तैयार होते हैं, समझना चाहिए विनाश तो जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े ही होंगे, बाकी सभी मुक्ति धाम चले जाएंगे। और जीवन मुक्ति धाम में तो पढ़ाई की ताकत से जाते हैं। तुम अटल अखंड अडोल राज्य करते हो, यहां तो देखो सभी खंड के टुकड़े टुकड़े हो गए और बाप तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते। बेहद के बाप से बेहद की बात सही, बेहद का वर्षा मिलता है। ये वर्षा कब दिया, किसने दिया, ये कोई की बुद्धि में कभी बैठता ही नहीं है। सिर्फ तुम ही जानते हो कि ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को ही मिलता है। तो आत्म की स्थिति में स्थित होना पड़े ना। आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्वरूप का ज्ञान सागर है ना। ज्ञान का सागर बाप ही बनता है। बाप ही आकर के ज्ञान सागर का बच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। और ये भी सेकंड की बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति होती है, बाकी तो सभी को मुक्ति मिल जाती है। सभी तो जीवन मुक्ति में जा भी नहीं सकते। ये भी ड्रामा बना हुआ है, रावण के बंधन से सभी मुक्त हो जाते हैं। वो लोग तो विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व के और ब्रह्मांड, विश्व के अंदर और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में सुख और शांति दोनों ही रहती है। ब्रह्मांड में सुख नहीं होता है, विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे ब्रह्मांड है, वहां ये पांच तत्वों आदि की कोई चीज नहीं रहती। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़ करके साइलेंस में चले जाते हैं। तुम बच्चों को याद है तुम इस समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, और तो कोई जानते नहीं है। तुमको तैयारी कराई जाती है, बाकी ये लड़ाई भी तो निमित्त है। सभी का हिसाब किताब चुकतु होना है, सभी पवित्र बन जावेंगे। योग अग्नि है पवित्र बनने के लिए, क्योंकि अग्नि से तो हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं, वैसे तुम्हें एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्यंत को जानना है, और जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तुम्हारा है बुद्धि योग से जानना, क्योंकि अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं, दूसरा कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो जो गुणों वाले थे वो ही फिर आसुर गुणों वाला बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, और बनाते भी हैं पूरा पतित से पूरा पावन। जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगता है तो पूरा पावन बनाते हैं। दुनिया में और कोई भी पता ही नहीं है कि ये देवता हैं, देवता घर वाले घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। वो पतित भी बनते हैं तो पावन भी बनते हैं, ये और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम अभी समझते हो ये तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन देवताओं के निकल ही नहीं सकते, वो तो नेचुरल चैतन्य गोरे होते हैं। पतित प्रकृति के पांच तत्वों से उनके शरीर थोड़े ही बनते हैं। ये तो पवित्र प्रकृति होती है जिससे शरीर पवित्र बनते हैं। यहां तो इस दुनिया में प्रकृति ही अपवित्र है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में तो होते ही हैं सुंदर, कलयुग में श्याम होते हैं। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर वन से लेकर के मालूम पड़ गया है। कृष्ण तो गर्भ से निकला और उनको नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए, तो जरूर कहेंगे कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर बाद में श्याम बनी, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारी चक्र की समझो जन्म पत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम समझते हो और कोई समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। तुमको अभी नई दुनिया नए घर में जाना होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो ही नई दुनिया में जावेंगे। ये लक्ष्मी नारायण बिल्कुल नई दुनिया के मालिक है। दुनिया के कोई की भी बुद्धि में ये बातें है ही नहीं, क्योंकि लाखों वर्ष कह दिया है और फिर परमात्मा को ठिक्कर भीतर में डाल दिया। अब ठिक्कर भीतर में तो कब आत्मा हो ही नहीं सकती है, इतनी मूर्खता है उनकी। फिर एक नाटक भी दिखाते हैं, कण कण में भगवान, इसको इग्लानी कहा जाता है। पत्थर बुद्धि बनने से उनको भी पत्थर बना दिए, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, मनुष्य कितना घोर अंधियारे में आ गए। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, बाकी तो सारी ही भक्ति है। फिर भक्ति वाली दुनिया का वैराग, कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग। बाप ज्ञान देते हैं जिससे हम आधा कल्प सुखी रहते हैं, फिर भक्ति में धक्का खाना होता है। वहां तो ये शास्त्रादि होते ही नहीं है, भक्ति पूरी होने के बाद ही वैराग आता है। सन्यासियों को फिर भक्ति के बीच में ही वैराग आ जाता है, तो सन्यासियों के वैराग में और तुम्हारे वैराग में क्या अंतर है? हैं? सन्यासी बीच में ही घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, पूरा वैराग आता नहीं। तुम्हारी तो भक्ति पूरी होती है तब तुमको वैराग आता है। सन्यासी तो घर बार छोड़ फिर इसी दुनिया में रहते हैं। तुमको जब भक्ति से पूरा वैराग आता है तुम ये दुनिया छोड़ देते हो। तुम बेहद का सन्यास करते हो, वो हैद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। बाबा है बेहद के सारी दुनिया का मालिक, सारी आत्माओं का बाप है। बाप को मालिक कहा जाता है। फरुखाबाद की तरफ मालिक को मानते हैं, इतने बड़ी दुनिया में एक फर्रुखाबाद जिले का ही नाम क्यों लिया? इसलिए लिया, ये इशारा दिया कि जो विश्व का मालिक बनने वाला है वो फर्रुखाबाद की तरफ ही निकलता है। फर्रुखाबाद के लोगों को इस बात का फखर रहता है कि विश्व का मालिक हमारे यहाँ का व्यक्ति है, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, जब वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाना माना समझदार हो जाना, ज्ञान में होशियार हो जाना, ज्ञानी हो जाना। अज्ञानी है तो कहेंगे बच्चे, और ज्ञान में समझदार हो जाएं तो कहेंगे बड़े। तो बाप को मालिक कहा जाता है, घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, जब वो बड़े होते हैं तो जरूर बच्चे पैदा करते हैं, छोटा बच्चा होगा वो बच्चे कहां से पैदा करेगा, बड़ा होगा तो उसमें बीज आ जाता है, ज्ञान का बीज होता है तो दूसरों में भी ज्ञान का बीज डालता है, बच्चे पैदा करते हैं फिर मालिक बनते हैं। तो ये सभी राज समझने के हैं, इसमें क्या राज की बात हुई। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता है, इसमें शास्त्र आदि करने की भी दरकार नहीं है, तुमको शास्त्रवाद करना ही नहीं है। एक ही टीचर सबसे ऊंचा है और वो टीचर जो ऊंचते ऊंचे है वो बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वो ही एक बाप सत्य है। 11 अप्रैल 1968 वाणी का चौथा पेज, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, बाप ही आकर के सत्यनारायण की सच्ची शिक्षा देते हैं जो फिर कथाओं के रूप में चलती रहती है। उन भक्ति मार्ग की कथाओं में मनुष्यों को भाव कितना रहता है। अभी तो देखो उन कथाओं आदि का भी इतना प्रभाव नहीं रहा है, नहीं तो बहुत बतरा व्रत आदि रखते थे। सत्यनारायण अर्थात नर से नारायण बनने की ये नॉलेज है जिससे फिर भक्ति मार्ग में महत्व चलता है। पवित्र आत्मा और पुण्य आत्मा कहा जाता है, ये लक्ष्मी नारायण है पवित्र आत्मा है, इनको पुण्य आत्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बाप को तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया तो इनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। अपवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा बनेंगे योग बल से, इसमें कोई दान पुण्य आदि करने की बात नहीं है, ये तो योग की बात है। भारत का योग मशहूर है, सारे विश्व को बाप हेवन बनाते हैं, इसलिए उनको याद भी कितना करते हैं कि आ करके हमको गाइड करो। आगे मुझ बनाते थे फिर जब उसमें मनुष्य मुझे जाते हैं तो चिल्लाते हैं हमको इससे निकालो। मंदिरों में भी कितना चिल्लाते हैं क्योंकि सभी मनुष्य मुझे हुए हैं, सुखधाम शांति धाम का गेट मिलता ही नहीं है तो चिल्लाते ही रहते हैं। तो कितने मेले मलाखड़े आदि लगते हैं, इनको कहा जाता है संगम युग। कुंभ का मेला तो अब है, वो कुंभ के मेले वो तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये है ज्ञान कलश, ये आत्मा और परमात्मा का मेला है असली। उन मेलों में तो मेले बन पड़ते हैं, बाप तो आकर बच्चों को बिल्कुल स्वच्छ बनाते हैं। कोई एक श्याम सुंदर थोड़ा ही होगा, कोई एक ही श्याम सुंदर बना होगा क्या। श्याम सुंदर का अर्थ देखो कैसा है, पुरानी दुनिया वाले को देखते हैं फिर नई दुनिया वाले को देखते हैं, पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया हाथ में आ जाती है। अभी तुम्हारा सिर है स्वर्ग की तरफ और लात है नरक की तरफ, हम अभी शिवालय में आते हैं और टांगे हमारी वैश्यालय की तरफ है। हम शिवालय में जानते हैं वाया शांति धाम, सिर हमारा इस तरफ है, चित्र करके एक का दिखाया है, ये तो बहुत समझने की बातें हैं। मनुष्य कहेंगे ये फिर क्या है, तुम इनका अर्थ क्या समझाते हो। जो बनाते हैं वो जरूर जानते होंगे, भक्ति मार्ग में चित्र बनाने वालों से अर्थ पूछो तो कुछ भी नहीं बतावेंगे, तुम तो सभी बातों का अर्थ समझते हो। इसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई, परंतु निराकार ईश्वर कैसे पढ़ावेंगे, इसलिए कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो साकार है। तुम बच्चे सिर्फ ये याद करो तो अभी सिर हमारा स्वर्ग की तरफ है, पैर नरक की तरफ है, तो भी तुम्हारा मन मना भव हो जावे। ये है रथ और वो है बाप, ये ज्ञान तुमको बाप देते हैं न कि ये रथ देता है। इन रथ का कोई गुरु नहीं है जिसने इनको सिखाया हो, नहीं तो गुरु होता तो फिर और भी अनेकों को सिखाई देते। ऐसे नहीं कि इनको ये ज्ञान किसी गुरु से मिला है, नहीं, इनको ये ज्ञान देते ही है बाप। ये तो सिर्फ रथ है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। एक छोटा सा पिकनिक का पॉइंट है, बच्चे ये तो जानते हैं हमारा बाप टीचर गुरु एक ही है। तो सदगुरु कहते हैं मामेकम याद करो, दुनिया में गुरु तो अनेक हैं, क्योंकि स्त्री के लिए पति गुरु ईश्वर कहलाते हैं। वो हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु है। अब गुरु तो लाखों हैं, सदगुरु तो एक ही है, इसीलिए तो उनको सदगुरु कहते हैं। कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, तुमको वहां काल खाता ही नहीं। तो जब तुम पिकनिक करते हो तो जो ऊंचते ऊंच बाप भी है और शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, फिर सुखधाम शांति धाम में ले जाने वाला भी है, तो ऐसे बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप जन्म जन्मांतर के कट जाएंगे। पाप कोई एक जन्म के नहीं है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर चढ़े हुए हैं। और ये बाप तो गारंटी करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो, और तुम सुखधाम शांति धाम के भी मालिक बन जाएंगे। तो बाप ही सुखधाम शांति धाम के गेट खोलते हैं, बाप ही स्वर्ग के उद्घाटन करते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं, अभी तुम ईश्वरीय दरबार में पिकनिक कर रहे हो, अभी तुम अपन को आत्मा समझ ईश्वर के दरबार में बैठे हो, तो तुम्हारी आत्मा कितनी श्रेष्ठ बन रही है, कितनी लाइफ अच्छी बनती है। बच्चे भी बाप को याद कर विकर्मों पर जीत पाते हैं। एक विक्रमाजीत राजा की कथा भी है, सतयुग में है विक्रमाजीत डिनेस्टी, फिर यहां इस दुनिया में होते हैं विक्रमी संवत, तो विक्रम करने लग पड़ते हैं। अच्छा, ओम शांति।
आधा पौना घंटा और
तुम भुगत रहे हो, हम नींद कर करते रहे
हैं।
उसमें एक पॉइंट आया
है, तुम बल भोगते रहो।
हाँ,
जैसे कुत्ता भोगता है ना, ऐसे आर्य समाज जब विरोध करते हैं तो भोगते रहते हैं, अखबारों में भोगेंगे, टीवी में भोगेंगे, फालतू फालतू बातें भोगते रहेंगे। तो बाबा कहते तुम बल भोगते रहो, मैं आराम से सोए, फालतू भोग रहे। बात को समझाई नहीं है तो उनको तो भोगना ही है, उनके भोगने से हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारी स्थापना तो होनी जरूर है। कितना भी अखबारों में भू भू करें, टेलीविजन में भू भू करें, रेडियो में भू भू करें,
एक बात अकड़ रहा होता है, एक बात साकार में आकर के हमको ध्यान सुनाते हो कि थोड़ी कर्म हो गई कैसे अकड़ता
है। सुनाते हैं लेकिन उनका अपना तन तो नहीं है, बिना शरीर के कर्म भोग कैसे बनेगा? कर्म भोग बनाने के लिए शरीर तो चाहिए, सुख और दुख शरीर से भोगा जाएगा या आत्मा भोगेगी? सिर्फ शरीर के साथ ही सुख दुख भोगा जाएगा ना, तो अपना शरीर तो है नहीं, फिर किसका है? है? हाँ, राम और कृष्ण का शरीर है तो उन्हीं के ऊपर हिसाब बनता है।
तो शिव बाप जो ध्यान देते हैं वो कर्म का बल जो शरीर जिस शरीर में आते हैं वो भोगते हैं।
ज्ञान देने का कोई फल नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान तो निराकार बाप का है, मनुष्य मात्र के पास तो ज्ञान होता ही नहीं। हाँ, वो जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को अपना करके, अपना बना करके, धारण करके फिर दूसरों को जो सुनाते हैं उसका भाग्य बनता है, चाहे वो रामकृष्ण की आत्माएं हो और चाहे कोई एक्स वाई जेड कोई भी आत्माएं हो। ज्ञान को धारण करेगी, धारण करके दूसरों को सुनाएगी तो उनका भाग्य बनेगा। शिव बाप ने आकर के ब्रह्मा के तन में सुना दिया, सुनाया तो ब्रह्मा के द्वारा सुना दिया, फिर उससे काम पूरा हो गया? काम तो पूरा नहीं होता, सुनाने के साथ साथ फिर समझाना भी पड़े, समझाने समझने के साथ साथ फिर धारण भी करना पड़े, धारण करने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में करके भी दिखाना पड़े। तो ये आत्मा करेगी या परमात्मा बाप करेगा? तो आत्माओं का काम है ज्ञान को धारण करना और दूसरों को करना, इसलिए उसको अकर्ता कहा जाता है, अभोक्ता कहा जाता है। जिसको अपना शरीर ही नहीं है वो आत्मा भोगेगी कैसे?
आगे बताया भूतनाथ जी, तो जो बाबा को याद करता है वो अंदर भूत में प्रवेश करता है, तो अभी बताया तो अंत में आप ही एक मिनट बताया दस दस बारह बारह आत्मा आपके प्रवेश होता है
आपके माने सबके
प्रवेश हो रहा।
वही तो कहा है, आप में प्रवेश होती है यानी सब में प्रवेश होती है क्या? कुछ आत्माएं ऐसी भी तो हैं जिनमें सिर्फ रामकृष्ण की आत्मा ही प्रवेश कर पाती है, और कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़े बता दिया कि हर एक रुद्रमाला के मणके में ढेर आत्माएं प्रवेश करेंगी। जितना दूसरों से प्रभावित होने वाली आत्मा होगी उतनी ही आत्माएं प्रवेश करेंगी। 63 जन्मों में दूसरों से प्रभावित ही नहीं हुआ होगा, एक से ही प्रभावित होकर चलता रहा है जन्म जन्मांतर, उसमें दूसरों को प्रवेश कैसे होगा?
लेकिन 21 जन्म तक प्रवेश ही नहीं होता।
21 जन्म की तो बात ही नहीं, 21 जन्म में व्यभिचार होता ही नहीं।
याद करने से थोड़ा भूत अगर प्रवेश हुआ तो जल्दी वो निकल जाएगा।
आत्म की स्थिति, बीज रूप स्थिति, विद रूप स्थिति जहाँ होगी वहाँ सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही नहीं करेगा। सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही तब करते हैं जहाँ देवान होता है, गंदे गंदे संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, उन्हीं में प्रवेश होता है। गंदगी में भूत प्रेत प्रवेश करेंगे। मैली विद्या कहा जाता है भूत प्रेतों की विद्या को, जो तांत्रिकों की विद्या है, भूत प्रेतों को वश करने वाली विद्या है, वो मैली विद्या कही जाती है। मैली क्यों कही जाती है? तो उसमें जो जकीरा इकट्ठा होता है आत्माओं का, वो सब मैली आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं, जन्म जन्मांतर गंदे काम करने वाली, चोरी, चकारी, डकैती, हत्याएं, खुदकशी, ऐसी आत्माएं हैं। ये सब काम देवान में करेंगी, ये आत्माभिमान में ये काम किए जाते हैं। जितना ज्यादा देहवान होगा उतने ये गंदे गंदे काम करेंगे।
ध्यान और पूजा तो सब करते हैं, बहुत घंटे करते हैं दिन में, उसका मन भी शुद्ध होता है, क्या उससे फल नहीं मिलता है?
ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान किसका करते हैं?
ईसाई
ऐसा ही
भगवान भगवान
भगवान को जानते हैं, ध्यान करते ही
परिचय नहीं हुआ।
फिर जब परिचय नहीं है तो रावण की पूजा करने लगे भगवान समझ के, वो कोई कोई तो भूत प्रेतों को ही भगवान मान लेते हैं, हनुमान को ही भगवान मान लेते हैं। अगर भूत प्रेत को ही भगवान मान लिया तो उसको याद करने से नुकसान होगा या फायदा होगा? जिसको याद करेंगे वैसे ही तो बनेंगे, तो न ध्यान से फायदा है न उनके ज्ञान से फायदा है। पहले फायदा है पहचान से, ऊंचते ऊंच कौन, ये पहचानो, फिर उससे ज्ञान लेना। वो भी अभी विचारी ज्ञान लेना, एक के अलावा औरों से न सुनना। फिर ध्यान की बात आती है, याद की बात आती है, एक के अलावा और दूसरे को याद न करना, उसमें भी नंबर बार हो जाते हैं। जानते हुए समझते हुए फिर भी एक से सुनते नहीं और एक को याद करते नहीं। है तो उनको याद करने वाले सदगति होनी है या ग्रेड कम हो जाएगा? अव्यक्तवाणी चलाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अव्यक्तवाणी को समझते हैं फिर फायदा क्या हुआ? आप समझते हैं तो आपको तो बाप मिला हुआ, इसलिए समझते हैं।
रामकृष्ण ने उनका ज्ञान से सिर्फ 10 करोड़ ही उच्चारण करते, बाकी 700 करोड़
10 करोड़ भी धारण कहाँ करते हैं? 10 करोड़ अगर धारणा में आ जाए, 10 करोड़ की धारणा में, तो राज परिवार में आवेंगे या प्रजावर्ग में आवेंगे? प्रजावर्ग में आएंगे, धारण करने वाले।
ये इब्राहिम मोहम्मद पैगंबर उनका पवित्रता उतना नहीं है, फिर भी उतना लोग उनका
फॉलोअर्स
बन जाते हैं।
कैसे? کتے کتریوں کو زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں, سور سوریوں کو زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں, یا شیروں کو زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں؟ مکھر مچھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں یا دیوتا زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ آپ سنکھیا سے شریک مانتے ہیں؟ پانڈووں کی سنکھیا کتنی تھی؟ پانڈو کتنے تھے؟ پانچ تھے. اور کورو کتنے تھے؟ تو کون کس رشتے میں آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جانا؟
پانچ
ہاں لینے کے لیے اچھا چاہیے, جیسے سنکھیا اچھی لگتی ہے. پھر بھی ہم کو تو سنکھیا چاہیے. جو اپنے دھرم کے پکے ہوتے ہیں وہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن ان کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے؟
کم سے کم 200 کروڑ ہوتے ہیں.
تو پھر کہاں ڈھیر کی ڈھیر سنکھیا والے, پاپولیشن بہت بڑھانے والے بے بیچاری, اور کہاں آپ بے بیچاری دے بات میں. جو پمپ اینڈ شو زیادہ کرتے ہیں, زیادہ دکھاوا کرتے ہیں, وہاں بچے زیادہ گھسیں گے یا سمجھدار زیادہ گھسیں گے؟ اٹریکٹ کرتے ہیں, وہاں بچہ بدھی زیادہ گھس جاتے ہیں, جن کو آکاری نہیں ہوتی. یہاں برہما کماری میں بھی جو گھس پڑے ہیں ڈھیر کے ڈھیر, وہ بچہ بدھی گھس پڑے ہیں یا صغیر بدھی گھسے ہیں؟ صغیر بدھی دو چار گھسے بھی تھے, وہ سارے سارے ادھر آ گئے. پیسوں سے کوئی سورگ نہیں بن جاتا ہے. پیسوں سے اگر سورگ بن گیا ہوتا تو پیسے ماؤنٹ آبو میں بہت ہے, وہاں سورگ بنا لیا ہوتا پھر بھائی کے لیے ایک طرح کی اتر آئے.
بہت نیچے والے معلوم بھی ہوتا ہے,
کیسے سنتے ہیں تو ان کو فروخت کرتے رہو,
ایسا نہیں ہوگا.
ہاں
سنتے ہیں اس کو معلوم بھی ہوتا ہے,
نہیں تو سنتے ہیں معلوم ہوتا ہے تو اور نہیں سننا چاہتے.
پھر بھی سنے تو بھی وہ فالو نہیں کرتا ہے, ایڈوانس جان کو فالو نہیں کرتا.
ان کے یوگی جو پوائنٹ ہے وہ انہیں نہیں ملا ہے. جب ان کے یوگی وہ پوائنٹ انہیں مل جائے گا تو پھٹ سے نکل آئے گا. ہر دھرم کے اپنے اپنے کوئی وشیش پوائنٹس ہوتے ہیں, جن پوائنٹس کے اوپر وہ مر مٹتے ہیں.
پرانا ہونے
دو, ہمیں تو یہ پتا ہے چاہے جتنے بھی پرانے بی کے ہوں چاہے جتنے بھی نئے بی کے ہوں, آخری تو سب کو اس گیان میں آنا ہی آنا.
وہی بول رہا ہوں,
کنورٹ ہو کے برہمن بن گئے, ابھی پھر کنورٹ ہو کر کے ادھر آ جائیں گے. جو کنورٹ ہو گئے ہیں ہی کنورٹ ہونے والے, ان کی کیا چنتا ہے, وہ تو نکل ہی آ رہے ہیں. ہمیں چنتا ہے اپنے کل والوں کی, تھوڑا سا گیان سنا اور پھٹاک سے ہمارے اپنے بچے وہ ہیں ہمارے گل کے, وہ ہم کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ تو جو سنتے ہیں, سن لیا تو سن لیا, نہیں سن لیا تو نہیں سن لیا, زیادہ ان کو آکرشن نہیں ہے, کشش نہیں ہے, وہ ہمارے گل کے ہیں ہی نہیں.
سدھارنا
ہے اور آتما کا سدھارنا ہے,
بچوں کے کیسا
فائدہ ہمارا
एक होती है निराकारी दृष्टि और एक होती है साकारी दृष्टि, कौन सी दृष्टि से ज्यादा फायदा होगा? है साकारी दृष्टि से फायदा होगा। हाँ, साकार में जो निराकार दृष्टि देता है निराकारी स्टेज में रहकर, उस दृष्टि से ही फायदा होता है। साकार ब्रह्मा बाबा थे, उनमें सुप्रीम सोल प्रवेश किया, लेकिन दृष्टि माँ की थी या बाप की थी? तो माँ साकार होती है निराकार होती है? माँ तो साकार होती है, तो कल्याण नहीं हो सकता। ये संग के रंग की बात का बड़ा सूक्ष्म असर है, बाहर से देखने में पता नहीं चलता। 63 जन्म में हमने कैसे संग का रंग लगाया किसी को पता ही नहीं चला, हम नीचे गिरते गए। क्यों नीचे गिरे? संग का रंग हमारा खराब होता चला गया तो हम नीचे गिर गए। अभी भी ज्ञान में आने के बावजूद भी हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ऊपर चल रहे हैं कि नीचे चल रहे हैं। है? कैसे जानना है? कोई की लगाव इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी सी दृष्टि लेते हैं और उन्हें सारा दिन याद रहती है, भूलती नहीं। कोई ऐसे अभी अभी दृष्टि ली, दृष्टि लेने के बाद बाहर गए और सारा भूल गए। क्या करें, बनी बनाई बन रही है, कुछ बननी नहीं। पूर्व जन्मों को जो जिसका जैसा जैसा हिसाब किताब है वैसा ही उनको लगाव लगता है। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है? बाहर की दुनिया में कोई गधी से दिल लग गई तो यहां ज्ञान सुनाने वाली परियां भी आ गए हैं तो उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वो भागना ही नहीं है। क्यों नहीं भागना? क्योंकि 63 जन्म में वो रामकृष्ण वाली आत्माओं का संग ही नहीं किया है। जिन्होंने जन्म जन्मांतर संग किया है उनको वो संग खींच लेता है। चलो कहीं